ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 29 पाठ करके श्रवण करेंगे। जड़ांध मूक बधिर पिशाचो उन्माद उन्मादकवत अवधूत वेशो अविभाष्यमानो अविभाष्यमानोपि जनानां गृहीतमौनव्रततुष्णीं बहुव। यह गद्य रूप से है, ये पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। जड़ांध मूक बधिर पिशाच उन्माधक अवधूत वेश अभिभाष्यमानोपि जनानां गृहीत मौन व्रतस्तुष्णीं बभूव। ये मतलब गद्य रूप से है, पया रूप नहीं है। तो अभी इस समय उपदेश समाप्त करके अभी श्री ऋषभ देव भगवान के चरित्र का उनके चरित्र का वर्णन अभी कैसे उन्होंने विचरण किया उसका वर्णन अभी चल रहे हैं। जड़ अचर स्थिर अंध अंधा मूक गुंगा बधिर बहरा पिशाच भूत उन्मादक पागल बत सदृश अवधूत वेश अवधूत के समान रहते हुए संसार से विमुख अविभाष्यमान इस प्रकार बहरा गुंगा तथा अंधा संबोधित होकर ओपि यद्यपि जनानाम लोगों द्वारा गृहीत ग्रहण कर लिया मौन न बोलने का व्रत व्रत संकल्प तुष्णीम बहुव चुप रहने लगा। अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे बहरे तथा गूंगे जड़ भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते किंतु ये मूक बने रहते और किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रम कर कर दिया हो, यहां लिखा है कर दिया हो, वो अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। जड़ांध मूक बधिर पिशाच उन्मादगवत, जड़ांध मूक बधिर पिशाच उन्मादगवत अवधूत वेश अभिभस्य मानोपि जनानाम गृहीत मौन व्रत तुष्णिम बभूव, तुष्णिम बभूव। सबसे पहले ये जो शिक्षा जो है, जो उपदेश प्रदान किए श्रील ऋषभ देव ने, भगवान ऋषभ देव, वो हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए। उनके सभी पुत्र सिलवान थे, कोई ऐसे नहीं कि मूर्ख था। सिलवान किसको कहते हैं, सिल किसको कहते हैं, सिलवान। जैसे गुरु ने कहा शिष्य से कि बेटा जाओ पानी लेकर आओ, शिष्य ने गुरु से क्या कहा, पानी लेकर आओ। शिष्य ने पानी लेकर आए और आकर दिए, फिर गुरु ने कहा बेटा इसको फेंक दो, शिष्य ने उसको फेंक भी दिया। तो गुरु ने पूछने लगे बेटा क्यों फेंका, हाँ आप क्या उत्तर देंगे, आपने कहा इसलिए फेंक दिया। उत्तर तो यह होगा ना कि आपने बोला इसलिए मैंने फेंक दिया। ये सिलवान नहीं है, सिलवान वो है, वो कहेंगे हे गुरुदेव गलती हो गई। क्या कहेंगे, गलती हो गई। जब महारानी जानकी जी वन में भ्रमण कर रहे थे प्रभु के साथ, तब प्रभु बहुत प्यासे थे, बहुत प्यास लगा था, तो कहे कि थोड़ा पानी, मतलब समझ गए कि प्रभु के पानी की जरूरत है। तो पानी लेने के लिए गए जानकी जी, और पानी लाने में देर हो गई, पानी लाने में थोड़ा देर हो गई। तो जानकी जी कहने लगे हे नाथ पानी लाया हूं। ठाकुर जी ने, श्री राम जी ने सिर को घुमा लिया, पानी की तरफ देखा नहीं। फिर दोबारा कहे हे नाथ पानी लेकर आया हूं, देखा नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र सोचने लगे कि ये शायद कोई हंसा हंसनी खेल देख रही थी इसलिए देर हो गई, हाँ देर होने का कोई कारण ही नहीं, हाँ इतना जल्दी पानी लगा चाहिए, बहुत प्यास है। जानकी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतना सुकुमारी, इतने मतलब कोमल अंगी, पैर में छुला पड़ गया, पैर में छुला पड़ गया, उस पर ध्यान नहीं दिया। जब प्रभु ने, श्री रामचंद्र ने पैर की तरफ देखा कि इनका पैर में छला पड़ गया, तो अरे तब ध्यान आया कि ये तो अभी इस समय के जमाने की कोई पत्नी होती वो क्या कहती, अरे दो थप्पड़ लगा देते हैं, हाँ अरे पैर में छला पड़ेगा देखा नहीं अभी तक, हैं। तो इस प्रकार से जानकी जी ने कभी नहीं कहा हे नाथ पानी लेकर आए हो, किंतु रामचंद्र जी ने कहा, पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में ध्यान दिया कि जानकी जी जो पैरों में छला पड़ गया, तब जाकर प्रभु ने स्वीकार किया। तो कहने का उद्देश्य सिलवान, सिलवान होना पड़ेगा। सिलवान मतलब गुरुजन कुछ भी कहे उस पर तर्क वितर्क ना करें, हमारी गलती है, एक गलती का स्वीकार कर लेना ही सिलवान का स्वभाव है। हम लोग तुरंत उत्तर दे देते हैं, गुरु हो चाहे भगवान हो, हाँ कि आपने कहा। इस प्रकार से ऋषभदेव जी के जितने पुत्र हुए सब सिलवान थे, सब शिक्षित थे, सब जितना प्रवचन कर ले और जितना प्रवचन सुन ले, जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो कितना दिनों से हम लोग प्रवचन सुनते हुए आ रहे हैं, कोई तो अनुभव तो है नहीं, हाँ सुन रहे जस्ट एक ड्यूटी के रूप से, और बोलने वाला भी वैसे ड्यूटी के रूप से, इसके हृदय में तड़पन आ जाए, अरे मैं कितना पीछे, सामान्य क्षण भर के समय बचा कुचा है, इसको कैसे भगवान में लगाया जाए, समय कैसे बचाकर प्रभु के नाम रूप चिंतन में लगाया जाए, ईश्वर ध्यान अधिक से अधिक होना चाहिए। इसलिए ऋषभ देव पहले राग की कथा सुनाया, ये संसार के जीव आप लोग जो है राग में है, अनुराग में पहुंचना है, बीच की जो रास्ता है वैराग्य है, वैराग्य की शिक्षा दिया अपने 27 श्लोकों में। जितने शरीर की जितनी जावत जितना आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करें और देहबंधन से मुक्त हो जाए। ये वैराग्य की शिक्षा महाप्रभु स्वयं आए देने के लिए। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रभु ही है, साक्षात श्री कृष्ण ही सचिनंद मतलब गौर हरि के रूप में आए वैराग्य की शिक्षा देने के लिए। यहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए एक शब्द तो बहुत महत्वपूर्ण है, अवधूत वेश। अवधूत वेश में क्या शिक्षा दी है श्रील ऋषभ देव जी ने, कि आखिरी में वो जड़वत हो जाते हैं, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, एकमात्र प्रभु का ही चिंतन हो, एकमात्र प्रभु का ही स्मरण हो, और कुछ भी करना है तो प्रभु के लिए ही करना है। इसलिए जड़ अंध बधिर मूक उन्मादकवत विचरते विचरण करने लगे कि संसार का कोई स्मरण ना हो। जब तक चित्तवृत्ति भव संसार का संसार में आसक्त रहेगा तब तक संसार का ही चिंतन होगा। पति पुत्र पत्नी मतलब जो भी हमारा संसार में है जब तक उसमें आसक्ति रहेगी तब तक उसी का ही चिंतन होगा। तो इसलिए वो जो आसक्ति प्रभु में ट्रांसफर करना है। हमारा आसक्ति है संसार में, ये संसार के आसक्ति जो आसक्ति है ये आसक्ति को भगवान में श्री चरणों में रूपांतरित करना है, इसी को कहते प्रेम। तो सत जब तक सत का चिंतन करेगा तब तक वो उनका चित्त वृत्ति मन भगवत आकार बना रहेगा, और जब तक असत का चिंतन करेगा, श्रील ऋषभ देव जी ने असत से हटाकर सत में लगाने के प्रयास कर रहे हैं। जितने भी मैंने कहा उन लोगों के लिए शिक्षा नहीं है जो पुत्र है, सब परम धार्मिक परम पवित्र परम श्रेष्ठ पुत्र हुए। ये शिक्षा ये उपदेश हमारे साधारण जीवों के लिए कि तुम राग से हटकर अनुराग की ओर चलो, वैराग्य के धारण करके। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब पार्षद को लेकर आए ये वैराग्य की शिक्षा देने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी इसमें एक आखिरी में श्लोक में तात्पर्य में लिखे अंत में कि ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका, मतलब जब इस प्रकार रहने लगेंगे, जब अवधूत वेश में पहुंच जाएंगे, अवधूत की शिक्षा देने के लिए आए, जड़ंध जड़ंध मूक बधिर पिशाच उन्मादकवत, ये अवधूत का लक्षण है, जड़ हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, बधिर हो जाएगा, हाँ उन्माद हो जाएगा, पिशाच की तरह आचरण करने लगेगा, तो उसको माया और माया के चंगुल से वो पार हो जाएगा। माया के चंगुल से पार होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत विरह की जरूरत है। हम लोग सोचते थोड़ा मोड़ा साधन कर ले इसी से माया से पार हो जाएंगे, हाँ थोड़ा दो चार माला जो भी है नाम जप कर ले, थोड़ा सा इधर उधर घूम ले, माया से पार हो जाएंगे, इसी से काम होने वाला नहीं। इसके लिए तड़पन चाहिए, विरह चाहिए, जलाग विरह जलाग्नि से और उसको पूरा नाश कर देंगे। जब तक विरह हरने से नहीं जलेगा विषय तब तक प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो विरह हरने के प्रकट करने के लिए क्या करना है, वैराग्य की धारण करना है। बिना वैराग्य से आज तो किसी ने भगवत प्राप्ति ना हुई है ना होगा आगे। अगर वैराग्य की शिक्षा न, महाप्रभु इसलिए आए वैराग्य शिक्षा देने के लिए, साक्षात प्रभु है, साक्षात श्री कृष्ण ही प्रभु के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और उन्होंने आकर क्या किया, वैराग्य की शिक्षा प्रदान की। एक बार सची माता निमाय से कहने लगे, बेटा निमाय मैं जो सुन रहे क्या सत्य है, मैं जो सुन रहे ये क्या सत्य है। तो निमाय कहे कि माँ आपने क्या सुना है, आए पूछने लगे। तो माँ ने बोली, बेटा मैंने सोचा था कि तेरे पिता जब देवांगत हो चुके हैं, मैं सोचा था कि आपके सहारे से जीवन बिता लूंगी, हाँ थोड़ी समय की रहनी है, किंतु तो आज आप मुझे छोड़कर संन्यास ले रहे हैं। तो महाप्रभु माँ तो जानती थी कि बेटा जो चीज हट कर लेते हैं उसको छोड़ता नहीं है, हाँ किंतु महाप्रभु कहे थे माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संन्यास लेने के लिए लेना लेंगे, नहीं तो नहीं। तो माँ ने आज्ञा भी दी थी कि बेटा तू संन्यास ले, हाँ। तो कहने का उद्देश्य ये है, महाप्रभु संन्यास की कोई जरूरत नहीं था, किंतु महाप्रभु वैराग्य की शिक्षा, नहीं तो नवजवती पत्नी 18-19 साल की पत्नी, 16-17 साल की पत्नी और विद्या 70 वर्ष अवस्था की माँ की छोड़कर, माँ को छोड़कर वन गमन करना एक संभव नहीं था। ये महाप्रभु हमारे जैसे साधारण जीवों को शिक्षा देने के लिए कि संसार में रहते संसार से वैराग्य बहुत जरूरी है। जो हमारे संसार के प्रति जो राग है, राग से अपने जीवन को हटाकर उन राग में ले जाना है, इसलिए महाप्रभु वैराग्य की शिक्षा दे। और महाप्रभु शिष्य जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो भी शिष्य हुए सब, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, तो कोई भी भक्त यहाँ से जाते महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु पूछते थे उस सनातन कैसे कैसे रह रहे वहां वृंदावन में। तो महाप्रभु पूछते थे कि रूप सनातन कैसे वहां विचरण कैसे रह रहे हैं। तो कैसे रहे, कैसे वैराग्य, कैसे भजन भोजन, हाँ कैसे अष्टपहर करें श्री कृष्ण भजन, कह तहा कैसे रहे रूप सनातन। भक्त से पूछते थे भक्त कैसे रह रहे, कैसे रहे, कैसे वैराग्य, कैसे भोजन, कैसे अष्टपहर करें श्री कृष्ण भजन, तबे प्रसंग सिया कहे से भक्तगण, अनिकेत दुहे बने जत वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। एक एक वृक्ष के नीचे, माने वृक्ष के नीचे मतलब सान्निध्य में, उसके छाया में एक रात शयन करते थे। एक एक वृक्ष के एक एक रात्रि रहते थे, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि शयन। विप्रगृहे स्थूल भिक्षा कहा माधु करी, शुष्क रोटी चाना चिवाई भोग परी हरी। यह रहनी रहनी ठीक करना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति सुलभ दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है, हमारा रहनी बहुत ढीला है। रहनी क्या, इस तरह रहनी रहना है, तब जाकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खूब खुश होते थे। इस जब सुनते थे कि हमारे रूप सनातन ऐसे रह रहे वृंदावन में, महाप्रभु हृदय से बहुत प्रसन्न होते थे। शुष्क रोटी चाना चेबाए भोग परी हरी, करुआ मात्र हाते कांथा छिड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तनय उल्लास। करुआ मात्र हाथे, हाँ करुआ मात्र हाथे, करुआ जानते जो कमंडलो, करुआ हाथ मात्र हाथे कांथा अछिड़ा बहिर्वास, हाँ छिड़ा। एक्चुअली वर्तमान समय भक्तों को इतना भोग क्यों प्राप्त होता है जानते, वर्तमान समय भोग भक्तों को इतना भोग, इतना विलासिता क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भजन प्रभु का करते हैं और चिंतन विषय का करते हैं। और यह कल्प, ये धाम जो है,
ये धाम चिंतामणि धाम है, भक्त जो चिंता करते पहले उसको पूरा करते हैं, इसलिए भक्त को बहुत भोग प्राप्त होता है। यहाँ एक चादर की जरूरत है तो 10 चादर आ जाएगा। जो भी सामान्य जितना कम से कम वस्तु स्वीकार करना है, किंतु चिंतामणि धाम में जो भी मुझे वहां जाना है, वहां भोग भोगना है, सारा संपत्ति आ जाएगी। इसलिए ध्रुव जी का पूर्व जन्म में भागवत साक्षात्कार होना था, किंतु एक राजवेशधारी पुरुष का दर्शन हो गया, संकल्प बन गया कि मुझे इस प्रकार के भोग भोगना है। जब संकल्प बन गया तो प्रभु उसको क्यों नहीं देंगे? तो प्रभु पहले बोले कि तुम पहले भोग भोगो, नहीं तो ध्रुव जी का पक्का भगवत साक्षात्कार हो ही चुका है, किंतु मन में संकल्प पूर्व जन्म का था। पुराण में आता है पूर्व जन्म में संकल्प था कि कोई राजवेशधारी पुरुष का मन में देखा, तपस्या तो कर रहे थे उस समय ध्रुव जी, देखकर मन में संकल्प बन गया। तो प्रभु पहले संकल्प पूरा करते, उसके बाद अपना प्रेम दान देते। इसी प्रकार जब धाम में रह रहे प्रभु का नाम करे, बहुत कुछ प्रलोभन आएगा, उसको हटाते रहना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे एक क्यों दे रहे हैं आप, क्यों आपके चरणों से वंचित कर रहे हैं? ठुकराते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप खाली हो जाएंगे। जितना भोग आए उस भोग से हटाते रहना, प्रभु नहीं चाहिए मुझे, कम से कम जीने की प्रयास करना चाहिए। ऐसे देखिए रूप सनातन का क्या कमी था, इतना राजमहल राज पद को छोड़ तिलांजलि देकर वृंदावन में आए और कैसे रहने लगे। इसको देख कितना गंभीर है, या महापुरुष का बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं। अनिकेत रहे कोई घर नहीं, अनिकेत माने घरहीन, अनिकेत रहे अनिकेत दुहे बने जत वृक्षगण, एक एक वृक्ष नीचे एक एक रात्रि शयन, विप्रगृहे स्थूल भिक्षा कहा माधु करी, शुष्क रोटी चाना चिवाई भोग परी हरि। शुष्क रोटी चाना चिवाई, इस समय तो फिस्ट चाहिए, रोज फिस्ट हो तो कोई आपत्ति नहीं, रोज होना चाहिए। किंतु हमेशा कम से कम सूखा रूखा खाकर अपना लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक लक्ष्य पर ध्यान नहीं रहेगा तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शुष्क रोटी चना चिवाई भोग परी हरि, करुआ मात्र हाते कांथा छिड़ा बहिर्वास, कृष्ण नाम कृष्ण कथा नर्तन उल्लास। अष्टपहर कृष्ण भजन, अष्टपहर कृष्ण भजन, अष्टपहर माने आठो प्रहर, अष्टपहर कृष्ण भजन चारिदंड शयने, चारिदंड माने एक दंड माने 24 मिनट, चारिदंड शयने माने 96 मिनट, 24 घंटा में कितना घंटा सोते थे? 96 मिनट, डेढ़ घंटा। अष्टपहर कृष्ण भजन चारिदंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमे सेह नहे कोनो दिने। ए हे रहने, नाम संकीर्तन प्रेमे से नहे कोनो दिने, कभु भक्ति शास्त्र कभी कभु भक्ति भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। निरंतर चैतन्य कथा, चैतन्य का चिंतन, अपना इष्ट का निरंतर स्मरण, भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धान, भक्ति जोग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति जोग क्या? कृष्ण नाम। और कृष्ण नाम क्या? निरंतर प्रभु के लिए रोना, यही विरहाग्नि। तो एक दो लड़की आती है, एक कथा भक्तमाल में आती है, बहुत सुंदर जी कैसे विरह हो। सिल पिल्ले एक गुरु ने एक घर में आते थे, दो छोटी छोटी लड़की, एक राजकुमारी एक जमींदार की बेटी, एक राजा की बेटी एक जमींदार की बेटी। जब गुरु जी ने आए अपना शालग्राम लेकर पूजा कर रहे थे तो दोनों लड़की छोटी अवस्था की थी तो कहे कि गुरु जी हम लोग को भी ठाकुर जी दे दीजिए, वो जो आप पूजा कर हैं शालग्राम वो मुझे हम लोग को दे दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटी ये तो हमारे ठाकुर जी, ये कैसे दे दे। तो नहीं, बहुत हॉट कर लिया, देना ही पड़ेगा। बोले बेटा काल आना, काल दे देंगे, काल आना। जब जमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो वहां से दोनों छोटे छोटे पत्थर लेकर आए, जमुना जी से दो छोटे पत्थर लेकर आए, सिल मैने पत्थर और पिल्ले मैने छोटा, छोटा पत्थर लेकर आए और दोनों को दो पत्थर दे दिया। तो उसी को भुक्ति से गुरु जी ने दिया, उसको उड़ाना, कपड़ा उड़ाना, श्रृंगार करना, तिलक लगाना, सुंदर भाव से गुरु जी जैसे करते थे ऐसे करने लगे। गुरु जी ने दिया, ये साक्षात प्रभु है। ये प्रभु का क्या नाम है, नाम दे दिया गुरु जी ने सिल पिल्ले। ये एकदम सत्य कथा भक्तमाल में नाहा जी ने लिखा है। तो सिल पिल्ले, तो कुछ जब बड़ी अवस्था हुई, शादी, राजा की बेटी की शादी हो गई, तो जब शादी हो गया तो जब पोते साथ में जा रहे थे तो पोते से कोई व्यवहार नहीं, कोई सांसारिक कोई चर्चा नहीं, वो तो ठाकुर जी के अपना सर्वस्व मानते थे, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको सुलाना, सब कुछ वही ठाकुर से व्यवहार रखते थे। तो जो राजकुमार थे वो देखे थे तो इस हमसे कोई संबंध नहीं, सिद्धू केवल अपना। तो उसको उन्होंने क्या किया था, उसको लेकर एक तालाब में फेंक दिया था, एक तालाब में फेंक दिया था। देते हुए रोने लगे और खाना पीना सुना सब छोड़ दिया, कुछ स्वीकार नहीं किया। तो बेटी के घर भी राज परिवार के थे, बोले बेटा जो भी हमें मंदिर बना देंगे, फिर नया ठाकुर जी ला देंगे, किसी स्वीकार नहीं, कुछ भी स्वीकार नहीं करते, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर एक ने कहा ठीक है, तू तो बहुत ठाकुर से प्रेम करती हो, ठाकुर जी तुझे कैसे प्रेम करते मैं देखना चाहते हैं। तो जहाँ तालाब में ले कर गए, जहाँ फेंका था तालाब में, वो तालाब में ले कर गए, कौन, राज परिवार के लोगों ने लेकर के, बहुत सांत्वना दे, बहुत समझाए, किसी प्रकार समझे नहीं कि मुझे ओ ठाकुर जी चाहिए, एक लक्ष्य मुझे, और सिर्फ जो गुरु जी ने जो दिया था सिल पिल्ले भगवान, वो मुझे चाहिए, एक हाथ पकड़ लिया। तो तालाब में लेकर के कूदना ही था, मैंने कूद कर ठाकुर जी से लेकर आएंगे। तो ठाकुर जी वहां से प्रकट हो गए और सिंहासन सहित आकर आलिंगन किया। जब विरह जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं, विरह आग जलाना है। और जब नियम निष्ठा ले लेते, कोई नियम ले लेते कि मुझे रोज श्याम सुंदर का मंगला व कोई दशरथ, कोई छोटा से छोटा नियम जब ले लेते, जब वो टूट जाता है तब उसमें विरह अग्नि प्रकट हो जाते हैं। इसलिए नियम कुछ रखना पड़ेगा कि ये नियम मुझे छूट ना जाए, इस नियम का बहुत महत्वपूर्ण है। कोई विग्रह दर्शन, विग्रह सेवा, धाम परिक्रमा, वृंदावन अखंड वास, कोई कुछ भी एक नियम अपना जीवन में अपना ले तो उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। तो रहने अवधूत वेश, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आप उनका जीवन चरित्र अपना अध्ययन करें, आखिरी समय बिल्कुल बोलने बंद, किसी से कोई बात नहीं करते थे, निरंतर नाम स्मरण। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे सप्तम गोस्वामी है, उन्होंने अनेक बहुत आचार्य मैंने देखा उनका जीवन ही, आखिरी समय बिल्कुल वाणी बोलना बंद, कुछ नहीं बोलते थे, केवल नाम सुमिरन। आज नाम सुमिरन ना, सुमिरन ना होने का कारण ये है कि विषय में आसक्ति बना हुआ है। जब तक विषय में आसक्ति रहेगा तब तक सुमिरन नहीं होगा, चिंतन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए चिंतन को बढ़ाने के लिए निरंतर जहां जहां मन, जहां जहां आकर्षण है वही में प्रभु का दर्शन करना पड़ेगा कि वही प्रभु उसी रूप में हमारे सामने है, तो वो प्रभु उसमें दिखाई देंगे। तो इसलिए उस रूप का दर्शन निरंतर, जिस जो हमारा इष्ट है इष्ट ही उसी भोग के रूप, तो वो जो भोग ऐश्वर्य है वो उसी रूप बन जाएगा, आपको प्रलोभित नहीं कर पाएगा। तो नियम है तो बहुत कुछ सुनने का उद्देश्य यही है कि जीवन में एक जलन उत्पन्न हो जाए, हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न हो जाए, एक प्रेम की ज्वाला धधकती जलती रहे। हाँ, इसको प्रकट करने के लिए सत्संग की जरूरत है। शुभ नाम भजन करे तो संभव नहीं, क्योंकि नाम भजन कभी कभी अभिमान आ जाता है, मैं भजन नंदी, मैं इतना लाख नाम जप करता हूं, किंतु सत्संग करने से कहां कहां कमियां है उसको पकड़ में आ जाता है। जैसे राग देश, और ये राग देश मिटाने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। आप सेवा के बिना, सेवा जो है परम पूज्य रमेश्वर महाराज बताते जी, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा गंगा, जिसे गंगा सब नालियां साफ कर देती है, इसी प्रकार सेवा जो है, कोई अगर सेवा निष्काम सेवा करते रहे, उसका जो राग देश देखा है ना, जहां जहां देश है, जहां जहां राग है, उसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। इसलिए सेवा बहुत जरूरी, जो भी मंदिर में छोटी से छोटी सेवा करना बहुत जरूरी है। कोई झाड़ू, कोई छोटा बड़ा ना समझे कि पुजारी सेवा बहुत बड़ा सेवा है, ये बहुत ड्रेन सफाई, बहुत झाड़ू मारना है, बहुत कम महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं। प्रभु की सेवा सब महत्वपूर्ण है। जब अंगद जी कहने लगे प्रभु श्री राम से कि प्रभु आप अपने पास से मुझे रख लीजिए, आप यहां से मुझे जाने मत दीजिए, छोटी से छोटी कोई सेवा मुझे दे दीजिए, प्रभु ने रखा नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी सेवा, कोई कोई भाव इस प्रकार देते कि प्रभु की सेवा में कोई छोटी नहीं है, सब बड़ी से बड़ी सेवा है। तो इसीलिए कोई प्रसाद सेवा वो भाव के सहित होना चाहिए। भक्ति में जो क्रिया हम लोग करते इसको भाव के सहित, सांसारिक लोग क्रिया को भाव के सहित नहीं करते, वो क्रिया के सहित करते, वो क्रिया को महत्व देते, किंतु भक्ति में भाव महत्व है। जितना भाव ऊंचाई पर होगा उतना ही उनका भक्ति के आगे स्तर पहुंच जाए। भाव प्रधान है भक्ति में, क्रिया प्रधान नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था ना, जो गोपियां सांसारिक क्रियाएं कर रही है, घर पोता, बच्चा को पिलाना खिलाना, स्वामी की सेवा करना, ये सब सांसारिक क्रिया, किंतु चिंतन भावना कहां? प्रभु में। हाँ, आ जहां चिंतन वही आश्रय, वही विश्राम होगा। हम संसार, हम भागवत क्रिया ये कर रहे हैं, किंतु हमारा चिंतन कहाँ? विषय में, हमारा विश्राम विषय में हो रहा है, इसलिए अनुराग नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या करना है? ऋषभ देव जी ने जड़ांध बधिर पिशाच मूक उन्मादकवत इस प्रकार रहने लगे कि कोई मुझे ना देखे, ना हमारे साथ कोई वार्ता करे, ना मुझे कोई इस प्रकार जीवन जीने की कम से कम थोड़ा समय चिंता एकांत में कुछ समय रहना चाहिए कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहे हैं। पद प्रतिष्ठा पोजीशन में गवाना नहीं चाहिए कि परम पद की प्राप्ति करनी है और समय बहुत कम है हमारे पास। तो जड़ांध मूक बधिर उन्मादकवत, हाँ उन्मादकवत विचरते और तुष्णिम बहुव, चुप हो गए, किसी से कुछ वार्ता नहीं। तो इस प्रकार व्यक्ति को भी माया ग्रास नहीं कर पाएंगे। तो सेवा जो मैं कह रहा था कि सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक भक्त जगन्नाथपुरी जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा भाई आप जा रहे हैं तो कुछ पैसा ले जाए। 10 रुपया दे दिया। कितना पैसा दे दिया? 10 रुपया दे दिया। आप 10 रुपया जगन्नाथ जी में चढ़ा देना, कुछ अर्पण कर देना। उन्होंने क्या किया, एक एक रुपया निकालते और जहां संकीर्तन मंडली देखते, जहां भगवान के भक्तों को देखते कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, उनको 1 रुपया फल मिठाई कुछ खरीद करके उनको पवा देते। क्या करते थे? 1 रुपया में उनको सेवा कर देते। तो ऐसे जिस जहां उस समय 1 रुपया का बहुत कीमत था, तो 1 रुपया कोई वैल्यू नहीं है, उस समय 1 रुपया का बहुत वैल्यू था। हाँ, तो 1 रुपया ऐसे करते करते 9 रुपया खर्चा कर दिया भक्तों की सेवा में, 1 रुपया जगन्नाथ जी में दे दिया। जगन्नाथ जी सपना दे दिया भक्त को कि मुझे 9 रुपये पक्का मिल गया, 9 रुपया मुझे पक्का मिल गया, 1 रुपया संदेह है, 1 रुपया मिला नहीं मिला उसे संदेह है, 1 रुपया दिया हाथ में पुजारी के हाथ में जगन्नाथ जी को देने के लिए, बोले 1 रुपया संदेह है हमको मिला कि नहीं मिला, 9 रुपया पक्का मिल गया। हाँ, तो उन्होंने पूछने लगे भाई 9 रुपया कैसे लगा दिया, बोले चलो 9 रुपया तो कम से लगाया, 1 रुपया फाली अपने खर्चा कर लिया होगा। तो जब आके पूछने लगे भाई 9 रुपये जगन्नाथ जी को दे दिया 1 रुपया नहीं दिया, तो कहे कि वो सच शायद इसको किसी प्रकार से पता चल गया, तो कहे जगन्नाथ जी कहे कि मुझे 9 रुपया मिला। हाँ, तो उन्होंने सारी घटना सुनाया कि 1 रुपया लेकर मैंने संतों की सेवा की। हाँ, संत सेवा से भगवान बहुत रिझते हैं, हाँ, जितना भगवत सेवा से रिझते हैं, इसलिए सेवा जहाँ मौका मिल जाए छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एवं भाव से कि हमारे प्रभु इसी रूप में हैं। हाँ, उसको जैसे आज परम पूज्य श्रील सुभग स्वामी गुरुदेव की जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है, जितना हो सके सेवा हो जाए। हाँ, क्योंकि समय बहुत कम है, समय हाँ इस शुभ अवसर समय हमें से नहीं मिलता है। हाँ, हमारी भी कोई ठिकाना नहीं कब हम रहे ना रहे शरीर में, तो हर क्षण प्रभु की सेवा में लगाने की प्रयास करना चाहिए। तो आज उनकी तिथि भी है, बहुत सुंदर तिथि, सभी लोग आज इस तिथि में आए, उनके श्रद्धांजलि अर्पण करें, जो भी सामर्थ्य है कुछ ला भी सकते फल फूल जो भी है, क्योंकि भक्तों सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से भक्तों की सेवा होती है। हाँ, तो ऐसे महापुरुष का तिथि बारम्बार आते रहे। हाँ, यही हम लोग का, हाँ, महाराज जी के स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसी से प्रभु से ही प्रार्थना है। तो आज का श्लोक मुख्य शिक्षा ने उपदेश ये है कि आप हम लोगों को वैराग्य धारण करना है, जड़ांध बधिर मूक उन्मादगवत पिशाच, इस जो लक्षण दिया, ये लक्षण आने से क्या होगा, निरंतर स्मरण होगा, कोई मुझे बात ना करे, क्योंकि मेरे से समय ये जो है ना, एक हरिवंश महाप्रभु एक प्यार में लिखते हैं कि जे अन सुनो निरखे अन फुटो नयन, एक श्लोक है उनका बहुत सुंदर प्यार है कि हमारा जो आँख है प्रभु का ही दर्शन करे, कान है जो प्रभु का ही कथा ही श्रवण करे, जीभा जो है प्रभु का बहुत सुंदर भाव है कि जीभा जो है वाणी जो है प्रभु का ही गुणगान करे, तो इसी एक करते करते क्या होगा, हम माया बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम व्यर्थ बातें नहीं करेंगे। देखिए कैसे हमारे आचार्य के अष्टपहर भजन करें, हाँ, चारिदंड शयन है, और हमारे क्या हो रहा है, चारिदंड भजन वो भी ठीक से नहीं हो रहा है, चारिदंड भजन वो भी अष्टपहर तो निद्रा खाने पीने सोने में जा रहे हैं अष्टपहर, और चारिदंड वो भी भजन ठीक से एकाग्रमन से नहीं हो रहे हैं, वो भी विषय का स्मरण कर रहे हैं, इसी से कल्याण होगा कभी नहीं, इसलिए अभी समय है सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, जड़ हो जाना चाहिए, क्या अंदर का संसार भले मुझे अलग कर दे क्या हानि है, हाँ, संसार मुझे बाहर मतलब अलग कर दे कोई हानि नहीं, एकमात्र लक्ष्य है प्रभु, समय बहुत संक्षेप, आगे ये सब सुंदर वातावरण नहीं मिल पाएगा, आगे सुंदर शरीर अभी स्वस्थ है, रोग कम है, इस समय भजन हो जाएगा, आगे कर भजन नहीं हो पाएगा, शरीर दिन दिन छीन होते जा रहे हैं, जैसे आगे जितना शक्ति सामर्थ्य जैसे जो चाहते हो कर लेते थे, और एक अभ्यास बन जाने के बाद ना जब नहीं हो पाएगा तब रोना आएगा, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। एक भक्त था, उनका नाम था हरिपाल, क्या नाम था, हरिपाल हर एकादशी तिथि को आते थे द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश कहाँ आते थे, द्वारकाधीश दर्शन के लिए जाते थे हरिपाल, हर एकादशी जाते, और जाने के बाद एकादशी रात जागरण करते थे और दूसरा द्वादशी करके आते थे घर, तो बहुत वृद्धा मना बहुत अवस्था हो गया था, तो फिर कहने लगे, फिर प्रभु ने कहा कि हरिपाल और आने की जरूरत नहीं है, हाँ आप विद्या हो गया क्यों आ रहे हैं इतना। बोले प्रभु मेरे तरह रहा नहीं जाते, मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाएंगे। तो बोले ठीक है, आप एक बैलगाड़ी लेकर आना, मैं आपके साथ जाएंगे। बैलगाड़ी लेकर आए तो सब लोग पूछने लगे, भाई आप बैलगाड़ी हर बार पैदल आते, अभी बैलगाड़ी क्यों लेकर आए? तो कहे कि प्रभु ने कहा बैलगाड़ी लाने के लिए। तो ठीक है, एक दिन दो दिन रह गया, फिर तीसरा दिन प्रभु उनको बता दिया था कि पीछे गेट से आना, पीछे गेट से मैं आपके साथ चले जाएंगे। तो बैलगाड़ी से, लेकिन साक्षात प्रभु भक्त से ऐसे भक्त हो तो प्रेम करते। अब लोग साउथ इंडिया कभी जाएंगे, वो है कुरेश, वो जो उडुपी में, अब लोग कभी उडुपी गए हैं? उडुपी से देखना आप, एकदम सीधा साक्षात प्रमाण आपको मिल जाएगा। हाँ, डेटी घूम गया भक्तों को दर्शन करने के लिए। आज भी जो मेन गेट है, मेन गेट बंद है, एक खिड़की से दर्शन करना पड़ता, छोटा सा खिड़की है, वो एक सेकंड में सबको निकाल देते हैं, आपको ज्यादा से दर्शन करने भी नहीं देंगे, क्योंकि हजारों संख्या में भीड़ है वहां। तो कुरेश कैसे भक्त बने? तो हरिपाल को कहे, मेरा कहने उद्देश्य भक्तों से भगवान का नित्य संबंध है, तो भक्तों से कहे कि आप गाड़ी लेकर आए। तो गाड़ी से बैठ के भक्त चल दिए, सुबह जब पुजारी लोग देखे यार सिंहासन खाली है, तो कौन लेकर गए? सब पता चल गया कि हरिपाल लेकर गए। तो हरिपाल का गांव था डाकोर, डाकोर में चला गया। तो डाकोर में जाते ही वहां से तो हरिपाल कहने लगे, प्रभु देखिए ये सब आगे, इसको ये सब लोग हमको पिटाएंगे, आप ऐसी व्यवस्था कर दे कि पिटाई खाने की व्यवस्था कर दे। तो बोले कि भाई तुम चिंता मत कर, पानी में घुसा दो, हाँ सामने तालाब है, तालाब में रख दो। तो तालाब में रख दिया, तो कोई देख लिया कि भाई तालाब में रख दिया, हाँ तालाब में रखते ही जब सब वो लोग आए खोजने लगे, तो तालाब में खोजे, तालाब में खोजते इधर पिटाई भी कर रहे, सत्य बताओ। जब खोजने लगे जो तालाब का जो पानी है खून हो गया था, मिला तो सही और तालाब से ही मिला, तालाब का पानी खून लाल हो गया था। तो लाल हो गया क्यों? तो प्रभु ने कहा कि तो हमारा भक्त को पिटाई किया, हाँ। बोले प्रभु चलिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो हमारे सामान जितना सोना है ओजन की सोना ले जाइए, हम नहीं जाए। तो हरिपाल से कहे कि हमारे ओजन के बराबर सोना इन लोगों को दे दीजिए। तो हरिपाल कहे कि भाई हम तो कंगाल है, हम गोरी है, हमारे पास धन सोना कहाँ, हाँ। तो प्रभु ने कहा, तो हरिपाल कहे कि हाँ हमारे पत्नी के कान में क्या बोलते इसको, बाली, हाँ बाली जो भी है हिंदी में, मुझे पता नहीं उतना, बाली है, बाली को आप दे दीजिए। बोले बाली या कहाँ, बाली या कहाँ आप, हाँ दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। तो कहे कि ठीक है मैं हल्का हो जाऊंगा, जो तराजू है तराजू में हल्का हो जाऊंगा। तो वो रखा एक साइड में, प्रभु को रखा, तो प्रभु हल्का हो गया, बाली भारी पड़ गया। तो वो लोग सोचे तराजू कुछ खराब हो सकते हैं, हाँ तराजू को फिर चेंज किया, प्रभु किधर रखा, फिर बाली को उधर रखा, फिर देखो वही सेम के सेम, प्रभु हल्का और तराजू भारी, और तराजू को बाली को लेकर आ गए। आज भी ठाकुर जी डाकोर में है। मेरा कहने का उद्देश्य है निष्ठा, निष्ठा बहुत जरूरी है, निष्ठा होते ही प्रेम धीरे धीरे से प्रकट हो जाएगा, आग लग जाएगा। श्रद्धा पहले, श्रद्धा के बाद साधु संग, और श्रद्धा विश्वास में क्या अंतर है? श्रद्धा हल्का होता है, कच्चा होता है, विश्वास दृढ़ होता है। जिसका श्रद्धा जो है, विश्वास अगर हो गया, हो गया मुझे मेरा इष्ट प्रभु है, एक विश्वास हो गया, ये नाम गुरु ने दिया, ये विश्वास दृढ़ विश्वास हो गया, इसी से प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम नाम संकीर्तन करें, वैराग्य पूर्वक करें, आचार्य का शरण लेकर करें, निश्चित प्रेम प्राप्ति संभव। तो आज आप लोग अवश्य इस संदर्भ में ये शिक्षा ग्रहण करिएगा, मतलब हम सब लोग इस शिक्षा ग्रहण करें कि जीवन में वैराग्य के धारण करके आगे चलना है। सुबह बाल भोग, दोपहर को राजभोग, और शाम को शयन भोग खाकर भक्ति होना भारी मुश्किल है, थोड़ा सावधानी रहनी है। रहने बहुत सावधानी है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हमेशा लक्ष्य प्रभु रहे आज सब क्रियाएं केवल व्यवहार की मात्र। श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब लोग आइए 1 बजे यहाँ, 12 बजे से ग्लोरिफिकेशन महाराज जी की, श्रील सुबोध समय श्री गुरुदेव की पुष्पांजलि ग्लोरिफिकेशन महिमा कीर्तन, उसके बाद कीर्तन हाँ पुष्पांजलि आरती सब होगा। आप लोग अवश्य आइएगा। हरी